તારીખ 8/5/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 482
સ્વાધ્યાય સુધા મેં 21 નંબર કા પેજ હૈ પેજ 21 પત્રાંક 609 यह पत्र मुमुक्षु जीव को सत्संग का महत्व दर्शाने के लिए लिखा गया है। मुमुक्षु को सत्संग का महत्व मूल्यांकन कितना होना चाहिए, सारा पत्र इस पर लिखा गया है। और सत्संग मिलता है, मिला है कभी भूतकाल में तो निष्फल गया है, इसका क्या क्या कारण है और इस कारण का अभाव कैसे किया जाए, ये सब चर्चा इस पत्र में बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर चर्चा आई है। पत्र का प्रारंभ मुमुक्षु का ध्येय से करते हैं, मुमुक्षु को सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग करने के, सत्संग की प्रवृत्ति के पीछे ध्येय क्या होता है मुमुक्षु का, इसलिए पत्र का प्रारंभ ध्येय से किया है। सत्संग है तो मुमुक्षु जीव की जो प्रवृत्ति है वो आवश्यक प्रवृत्ति है, यानी मुमुक्षु को ऐसा कह सकते हैं वो बेसिक बात है, यानी आधार है। और किसका आधार है कि अपने ध्येय का आधार है, मोक्ष का आधार है, इसलिए बात मोक्ष से चलाई है, जो अंतिम लक्ष्य है। अगर ऐसा नहीं हो तो सत्संग की प्रवृत्ति ध्येय शून्य हो जाएगी, ध्येय शून्य प्रवृत्ति भी लाभदायक नहीं होती, इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। जितना उतना ही वो ध्येय के साथ सत्संग होना आवश्यक है, इसलिए सत्संग का महत्व दर्शाते हुए बहुत विचक्षणता से इस विषय का प्रतिपादन कृपालु देवी यहाँ पर कर रहे हैं। सहज स्वरूप से जीव की स्थिति होना, इसे श्री वितराग मोक्ष कहते हैं। जैसा सहजात्म स्वरूप है वैसी दशा प्राप्त हो जानी, ऐसी स्थिति हो जानी, जैसा स्वरूप है ऐसी स्थिति हो जानी, इस स्थिति को श्री वितराग देव ने मोक्ष कहा है। मोक्ष की बात दो अपेक्षा से करते हैं, एक ध्येय की अपेक्षा से करते हैं और एक दृष्टि जब प्राप्त होती है, यानी सम्यक दर्शन होता है तो एक न्याय से उसको भी दृष्टि अपेक्षा से वो मुक्त हो गया ऐसा कहने में आता है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार में वो बात कही कि सही मुक्त एवा सम्यक दृष्टि ऐसो मुक्त हो गया, वो श्रद्धा अपेक्षा से बात है। क्यों? श्रद्धा में तो बंध का तो विषय नहीं है, मोक्ष का भी विषय नहीं है, मुक्त स्वरूप आत्मा का ही विषय है। आत्मा को बंध मोक्ष है ही नहीं, ऐसी श्रद्धा होती है। इसलिए वहां तो बंध का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो मुक्त हो ही गया, द्रव दृष्टिवान तो मुक्त हो ही गया। उसमें तो वही रहस्य है कि सत्संग क्यों करते हो। हाँ, सत्संग मोक्ष के लिए होना चाहिए और यथार्थ सत्संग सत्संग होने से मोक्ष मिलेगा ही। पहले दृष्टि अपेक्षा से मुक्ति हो जाएगी, फिर परिपूर्ण शुद्ध दशा होकर के मुक्ति हो जाएगी। और मोक्ष के लिए सत्संग करना है तो कहेंगे कि मोक्ष तो आत्मा में अंतर्मुख होने से होता है, सत्संग करने से थोड़ी ना होता है। आत्मा में स्वरूप लीनता होने से मुक्ति होगी तो उसको कहेंगे कि वो असंग दशा है। क्या उपयोग किसी भी अन्य पदार्थ का संग न करे उसको कहते हैं असंग दशा। और ऐसी असंग दशा सत्संग के बिना किसी को होती नहीं है। यहां से सत्संग का अनुसंधान बिठाया है मैंने, विषय का प्रतिपादन बहुत विचक्षणता से किया है, असाधारण विचक्षणता से प्रतिपादन चल रहा है। क्या कहा फिर से, सहज स्वरूप से जीव की स्थिति होना इसे श्री राग मोक्ष कहते हैं। जैसा सहजात्म स्वरूप है वैसी स्थिति में दशा हो जाए उसको कहते हैं मोक्ष। एक तो मोक्ष की शुद्ध परिभाषा है। अब अपेक्षित बात करते हैं, दूसरी अपेक्षा से भी मोक्ष बोला जाता है कि जीव सहज स्वरूप से रहित नहीं है, अपना सहज स्वरूप का त्याग किया हो ऐसा तो कभी स्वरूप में नहीं बना है। अनादि अनंत सहज स्वरूप से सहित ही है, परंतु जीव सहज सहज स्वरूप से रहित नहीं है, मतलब सहित ही है, परंतु उस सहज स्वरूप का जीव को मात्र भान नहीं है। है सहज स्वरूप लेकिन भान नहीं है, नहीं है। जो भान हो जा होना वही सहज स्वरूप से स्थिति है। चतुर्थ गुण स्थान में द्रव्य दृष्टि होने से भान होता है, सम्यक दर्शन में भान होता है कि मैं त्रिकाल सहज स्वरूप हूं, और त्रिकाल सहज स्वरूप हूं यही सम्यक दर्शन का श्रद्धान का विषय होता है। इसलिए सहज स्वरूप का भान हो गया तो सम्यक दृष्टि मुक्त हो गया, फिर उसको बंधन स्वरूप में दिखता नहीं है, अवस्था का ज्ञान रह जाता है। अवस्था में जितना बंधन है उसका ज्ञान रह जाता है। जीव सहज स्वरूप से रहित नहीं है, परंतु उस सहज स्वरूप का जीव को मात्र भान नहीं है, और वो अनादि से नहीं है। जो भान होना वही सहज स्वरूप से स्थिति है, और सहज स्वरूप की स्थिति को तो मोक्ष बोल दिया है, इसलिए भान होना यही मोक्ष दशा है। एक तो परिपूर्ण शुद्ध मोक्ष दशा है, तो मुक्त स्वरूप का भान होना वो भी मोक्ष दशा है, मुक्त दशा है। सहज स्वरूप एट मूल स्वरूप, सहज स्वरूप माने मूल स्वरूप, आत्मा का परम तत्व जो है, स्वभाव तत्व है, परम पारिणामिक भाव रूप जो तत्व है, अनादि अनंत एक रूप ध्रुव अपरिणामी, उसको सहज स्वरूप कहते हैं। ना सत्पुरुष है मूर्तिमान मोक्ष, सत्पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है। मोक्ष अरूपी जीव की अरूपी अवस्था है, जीव अरूपी तत्व है और सिद्ध पर्याय भी अरूपी है, लेकिन मूर्तिमान मूर्ति रूप में मोक्ष का दर्शन करना हो तो सत्पुरुष का दर्शन कर लो। मूर्तिमान मोक्ष सत्पुरुष है, 249 में लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि शास्त्र से ज्ञान होता नहीं है, सत्पुरुष से ज्ञान होता है, इसलिए लिखा है वो।
सत्पुरुष की पहचान कैसे हो?
सत्पुरुष की पहचान दृढ़ मुमुक्षुता प्राप्त होने से और दृढ़ मुमुक्षुता आने पर परिणमन का प्रयास चलता हो, ऐसी योग्यता आई हो तो, और अंतर्मुख होने की वृत्ति हो, बहिर्मुख वृत्ति का निषेध बहुत आता हो, ऐसी योग्यता पात्रता होने पर सत्पुरुष की पहचान होती है। वो बात 674 में लिया है, तो स्वाध्याय चला था अपने शुरू शुरू में, यहाँ से ही तो स्वाध्याय चालू किया था। हाँ अच्छा अच्छा अब क्या हुआ है, भूतकाल कैसा हुआ, कैसा गया, कि संघ के योग से यह जीव सहज स्थिति को भूल गया है। संघ से नहीं, लेकिन संघ के योग से। संघ का योग मैंने क्या, कि जो पर पदार्थ का संघ है शरीर आदि, उसमें उस रूप अपने को स्वीकार कर लिया, इसको कहते हैं संघ का योग। मैं फलाना फलाना मनुष्य हूं, तो ये कर्म जनित अवस्था में कर्म का योग है, कर्म का संबंध है, योग मैंने संबंध है, उस रूप स्वीकार कर लेना अपने को, उसको कहते हैं संघ का योग। संग होने से कोई नुकसान नहीं है, तीर्थंकर देव को भी शरीर तो होता है, होता है कि नहीं होता है, अरे शरीर क्या समोसरण का संग होता है, और समोसरण में लाखों करोड़ों जीव सुनते हैं, इसका भी संयोग होता है, लेकिन योग होता नहीं है। मैं भगवान हूं और ये मेरे भक्त है, हाँ जो सुनने को आते हैं वो मेरे भक्त है, और जो मुझे सुनने को नहीं आते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, ऐसा तीर्थंकर को भाव होता नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, और मैं जब ज्ञाता हूँ तो और अन्य सब मेरे ज्ञेय है। मैं ज्ञाता हूँ और ये ज्ञेय है, इससे ज्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो भी भिन्न ज्ञेय है, स्वज्ञेय की तरह अभिन्न ज्ञेय नहीं है। लेकिन संघ के योग से, अनादि से, यह जीव सहज स्थिति को भूल गया है। यह जीव, मैंने अपना जीव, अपने सहज स्वरूप को भूल गया है कि मैं कैसा आत्मा हूँ, वो ही उसको पता नहीं है, कोई खबर नहीं है उसको। और संघ की निवृत्ति से, मैंने उस प्रकार के परिणाम, संघ वाले परिणाम की निवृत्ति से, उसको संघ की निवृत्ति कही। मैं संग वाला हूँ, संयोग वाला हूँ, उस परिणाम की निवृत्ति को संग की निवृत्ति बोलने में आती है। क्योंकि जगत में छह द्रव्य का संयोग अनादि अनंत रहने वाला है। जहाँ जीव द्रव्य है वहां दूसरे पांच द्रव्य है, तो किसी द्रव्य को हटाना वो बात तो है ही नहीं। लेकिन योग को, उपयोग को हटा दे, उपयोग को हटाएं, उसको कहते हैं कि योग को छोड़ देना, छोड़ दिया। संग की निवृत्ति से सहज स्वरूप का अपरोक्ष भान प्रकट होता है। अपरोक्ष मैंने प्रत्यक्ष। संघ की निवृत्ति होने से, यानी संघ के ऊपर का अपना अधिकार छोड़ देने से, क्या अधिकार जमाया है? ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। अधिकार जमाते कि नहीं जमाते? एकाधिकार है, अधिकार में भी एकाधिकार। तो परिवार मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, तो उसकी निवृत्ति से अपना जो सहज स्वरूप है, इसका प्रत्यक्ष भान प्रकट होता है। भान होता है नहीं, भान प्रकट भान होता है, कोई अप्रकट अवस्था नहीं है, वो प्रकट अवस्था है भान होना। वो है प्रत्यक्ष भान होता है, बीच में कोई इंद्रिय की भी अपेक्षा नहीं है, कोई दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन लाइट ऑफ हो जाए तो पढ़ नहीं पाएंगे, अक्षर दिखेगा
नहीं।
तो पढ़ने में प्रकाश की अपेक्षा है, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। लेकिन आत्मा का दर्शन करने के लिए कोई प्रकाश की अपेक्षा
नहीं है।
दिन में आत्मा दिखे और रात्रि को आत्मा का दर्शन नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता।
तो सतत भान रहता है, भान रहता है तो सतत रहता है, दिन रात। सुख धाम अनंत सुसंत से ही दिन रात रहे तद ध्यान मही। दिन रात उसका ध्यान रहता है।
अपरोक्ष भान कौन से स्टेट को दर्शाता है? अपरोक्ष भान प्रकट होता है, अपरोक्ष भान को प्रकट होना कौन से स्टेट को दर्शाता है?
कौन से? चतुर्थ गुण स्थान। प्रथम चतुर्थ गुण स्थान में प्रत्यक्ष साक्षात्कार, सहजात्म स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है।
तो मोक्ष की भूमिका में प्रकट होने का प्रयास चर्चा है क्या?
मुमुक्षु की भूमिका वो प्रयास की भूमिका है, भान करने की, भान में आने की प्रयास की भूमिका है, उसको मुमुक्षु दशा कहते हैं। और उस मुमुक्षु दशा में ध्येय होता है मोक्ष का, ध्येय होता है मोक्ष का, इसको मुमुक्षुता कहते हैं। हाँ हाँ ठीक बात है, हम कोई संघ वाले नहीं हैं, यहाँ संघ की निवृत्ति मैंने दीक्षा ले ले वो बात नहीं है, तो चलो घर छोड़ के चले जाए वो बात नहीं है। अपरोक्ष भान किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ होती नहीं है। मैंने गृहस्थी को भी होता है, लेकिन गृहस्थी को होता है तो वो अपने को गृहस्थी का अनुभव करता नहीं है, वो अपने को सहजात्म स्वरूप का अनुभव करता है, मैं गृहस्थी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता है। और त्यागी होकर के मैं त्यागी हूँ ऐसा अनुभव करता है, उसको सहज स्वरूप का प्रत्यक्ष भान होता
नहीं है,
नहीं है। क्योंकि न आत्मा गृहस्थी है न आत्मा त्यागी है, आत्मा तो सहज स्वरूप है। इसलिए सौर तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंगता ही सर्वोत्कृष्ट कही है, संग की निवृत्ति में असंगता ली, उपयोग अंतर्मुख हो जाए और उपयोग कोई अन्य द्रव्य का संग नहीं करे, उसको असंग दशा कहने में आती है। तो सर्व तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंगता ही सर्वोत्कृष्ट कही है, ऐसा उपयोग जिसका अंतर्मुख हो गया वो तो सर्वोत्कृष्ट दशा है। उत्कृष्ट यम, उत्कृष्ट नियम, उत्कृष्ट संयम, उत्कृष्ट व्रत, मैंने महाव्रत, जिसमें समाविष्ट होता है ऐसा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष शुद्धोपयोग को नमस्कार हो, नमस्कार वचन आया ना, ऐसे शुद्धोपयोग में, तो एक शुद्धोपयोग में उत्कृष्ट नम नियम व्रत संयम सब उसमें समाविष्ट है, ऐसा शुद्धोपयोग को नमस्कार करते हैं। एक कृपाल जी का वचन है और जगह, हाँ उपयोग चारित्र की दशा को कहते ही नहीं, उपयोग ज्ञान दर्शन की दशा को ही उपयोग बोला जाता है, जबकि चारित्र भी उस वक्त अंतर्मुख होता है। जब शुद्धोपयोग होता है तो जो स्वरूप आचरण चारित्र हो ही जाता है, लेकिन उपयोग संज्ञा दर्शन ज्ञान गुण के परिणाम को ही लागू पड़ती है, दूसरे गुण के परिणाम को उपयोग संज्ञा उपयोग नाम दे सकते
नहीं है,
हैं? हाँ, तो शुभ भाव से जुड़ा हुआ उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं, शुद्ध स्वरूप से जुड़ा हुआ उपयोग को शुद्धोपयोग कहते हैं, अशुभ परिणाम के साथ जुड़ा हुआ उपयोग को अशुभ उपयोग कहते हैं। तो उस प्रकार से उपयोग का विशेषण उनका विषय को साथ को लेकर के बोला जाता है, ऐसी वहाँ विवक्षा समझनी चाहिए। इसलिए सर्व तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंगता ही सर्वोत्कृष्ट कही है, कि जिसमें जिस असंगता में सर्व आत्मसाधन रहे हैं, जितने भी आत्मा के साधन है वो असंग दशा में समाविष्ट है। कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन हुए ना, तो उसको चतुर्थ गुण स्थान में धर्म साधन बाहर में कौन सा होता है, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हम माने। बताइए एक प्रश्न की चर्चा हम करें। सम्यक दृष्टि में भी सहायक सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट सम्यक दर्शन का ये पद है। चतुर्थ गुण स्थान में ऐसा सहायक सम्यक दृष्टि होता है तो उनको बाहर में धर्म साधन कौन सा होता है, उसको शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन हो गया। एक सम्यक दर्शन कहाँ होता है, शुद्धोपयोग में होता है, उसको बाहर में कौन सा धर्म साधन होता है, ऐसा जरूरी है क्या कि वो जिन मंदिर जाता है कि नहीं जाता है? हाँ नहीं जाता, जरूरी नहीं।
तीर्थंकर
अनुव्रत धारण करते हैं, पंचम गुण स्थान में आते हैं तो करते हैं। कोई तीर्थंकर पंचम गुण स्थान में आते हैं तो अनुव्रत धारण करते हैं, पर कोई नहीं आते तो सीधा सप्तम गुण स्थान में भी आ जाते हैं, धारण भी करते हैं, दोनों बात होता है। अपने तो चर्चा दूसरी करनी है। मनुष्य को ही सम्यक दर्शन होता है तो क्या तिरियंश को नहीं होता है? मनुष्य को
मनुष्य रूप अगर है, मतलब कोई जीव मनुष्य है तो उसको देवदत्तन का नियम तो होगा ही
नहीं? कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी करे तो उसका सम्यक दर्शन चला गया क्या, चला जाता है क्या? ठीक है, सहायक सम्यक दृष्टि मनुष्य हो उनको नित्य देव दर्शन का नियम होता है क्या? हाँ, अगर नहीं करता है तो उसका सम्यक दर्शन चला जाता है क्या? ऐसा कोई नियम होता नहीं है, ऐसा नियम नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं कि देव दर्शन नहीं करना, वो मतलब नहीं है, उल्टा नहीं लेना है बात, तो सुलटा लेना है समझने के लिए। क्यों, क्या लिखा कृपालु देव ने कि असंग उपयोग है जिसमें सर्व आत्म साधन रहे हैं, ये बात को ले जाना है। आत्मा का सर्व साधन उसमें आ गया असंग उपयोग हुआ तो सम्यक दर्शन का महत्व लेना है। ये कोई शुभ भाव के आधार से टिकने वाली चीज नहीं है, या शुभ भाव के कारण से होने वाली चीज
नहीं है,
ये अपनी ताकत से होता है, वो अपना गुण की शक्ति से होता है।
सर्व जीव साधन समाया हुआ हो
पंद्रहवीं गाथा में समय सार में कुंदकुंद आचार्य देव ने जीर्ण शासनम सर्वम क्या लिखा, जो शुद्धोपयोग में आता है उसको कहा कि जीर्ण शासनम सर्वम, समस्त जीर्ण शासन उसमें समाविष्ट है, या धर्म के सर्व साधन उसमें आ गए ऐसा लिखा। देखो एक बात दोनों की बात एक हो गई, कुंदाचार्य की जो बात है वही कृपालु देव की बात हो गई, समस्त जैन शासन उसमें आ गया, कोई बात बाकी नहीं रही। और यही शासन की सच्ची प्रभावना है, क्या अपने आत्मा को शुद्धोपयोग से प्रभावित करना, यही आत्मा के, यही धर्म के, यही जैन शासन की सच्ची प्रभावना है। इसलिए बोला कि ये जीन शासन हम सबम, ये समस्त जीन शासन है। समस्त क्यों कहा, यहाँ तो शुद्धोपयोग होता है, वो केवल ज्ञान की तरह पूरा पूरा तो नहीं होता है, सम्यक दृष्टि को तो शुद्धोपयोग होता है, तो कोई पूरा पूर्ण शुद्धोपयोग तो नहीं होता है, फिर भी वो समस्त जीन शासन है। जाति होगी, केवल ज्ञान की जाति का है, और यही सच्चा जीन शासन है, ये शुद्धोपयोग है, यही सच्चा जीन शासन है। शुद्धोपयोग होता है कब, सर्व प्रकार से पूरी ताकत से जो अपने शुद्ध स्वरूप को उपादेय भूत करके परिणमन करता है, तब उपदेश मज्जम जीन शासनम सर्वम। उपदेश मज्जम मैंने ये सर्वश्रुत इसमें आ गया, भावश्रुत ज्ञान हुआ तो सर्वश्रुत उसमें आ गया, तो सर्वश्रुत में जितना उपदेश है सब उपदेश का सार उसके हाथ में आ गया। बारह अंग का सार क्या है, बारह अंग का सार क्या है, अनुभूति, बारह अंग का सार अनुभूति है, आया कि नहीं आया, समय सार का 13 नंबर का कलश में, कलष्टिका में ये बात आया, बारह अंग का सार स्वानुभूति है, और स्वानुभूति शुद्धोपयोग है, इसलिए उसमें सर्व साधन आ गया। ये कहा
जाति का एक कहना थोड़ा कम लगता है, अनुभव करते हैं, अनुभव में क्या फर्क है,
कोई फर्क नहीं, अनुभव की तारतम्यता में फर्क है, बाकी अनुभव के में कोई फर्क नहीं है, तारतम्यता में फर्क है तो सब विकल्प दशा आ जाती है, बाकी तो शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग है, और उसमें आत्मशुद्ध परम परमात्मा तत्व का ही अनुभव है, मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव इसमें आता है। तो कृपालु देव ने 680 पत्र में ऐसा बोल दिया, लिख दिया कि हम परमात्मा हुए हैं, क्या क्या लिखा है, हम परमात्मा हुए हैं, और परमात्मापणा के अभिमान से वो बात हम लिखते नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुभव करते हैं, परमात्मा स्वरूप रूप अपने आप को अनुभव करता है तब शुद्धोपयोग होता है, उसको ही शुद्धोपयोग कहते हैं। परमात्म स्वरूप है आत्मा, और उस रूप अपने आप को अनुभव करता है, बस बात खत्म हो गई, उसमें कोई फिर अनुचितता रहती नहीं है, वो सर्व प्रकार से उचित है जी, क्या
हर समय अनुभव नहीं करता है,
क्यों उपयोग में हर समय नहीं करता, परिणति में तो हर समय रहता है, ठीक है, परिणति में तो हर समय रहता है कि नहीं रहता है, अच्छा परिणति में हर समय रहा, और जिस समय परिणति में रहा उस समय उपयोग बाहर गया, तो ज्ञानी क्या कहते हैं, ये मेरा उपयोग नहीं, बाहर गया वो मेरा उपयोग है ही नहीं, वो अनुपयोग है, उपयोग नहीं है, वो अनुपयोग है, ये अनात्मा है। हम उसको आत्मा कहते हैं, नहीं है। और ज्ञानी को भी स्वविकल्प दशा में उपयोग बाहर जाता है तो प्रभुत्व परिणति का है, उपयोग का प्रभुत्व नहीं है। फिर से ज्ञानी के परिणमन में भी उपयोग जब स्वरूप में नहीं है तो भी उस वक्त के परिणमन में परिणति का प्रभुत्व है, उपयोग का प्रभुत्व नहीं है। तो जिसका प्रभुत्व है इसको हम गिने या जिसका प्रभुत्व नहीं है इसको गिने हैं? देखिए एक घर में हम ये कहेंगे कि सबसे बड़े वो है, इनको पूछो तो कोई कहेंगे कि भाई इनसे पूछने से कोई फायदा नहीं, इसकी चलती नहीं है। क्या चलती है? फलाने की, उसको पूछो। मतलब जिसका प्रभुत्व है उससे काम लो ने, जिसका प्रभुत्व नहीं इसे बात करने से क्या फायदा? हाँ, तो न्याय संपन्न बात है। हाँ, जिसकी परिणति तगड़ी है तो उपयोग को बार बार के खींच करके उपयोग को अंदर में ले जाएगी परिणति। ये परिणति का प्रभुत्व इतना बड़ा है। क्या? हाँ, भान रहता है, प्रत्यक्ष भान रहता है, अपरोक्ष भान लिया है, प्रत्यक्ष भान रहता है और वो निरंतर रहता है। इसलिए मनुष्योचित प्रवृत्ति मनुष्य सम्यक दृष्टि को होती है और देवोचित प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि देव की होती है। तिर्यंच उचित प्रवृत्ति तिर्यंच सम्यक दृष्टि को होती है और नारकी होते हैं सम्यक दृष्टि तो उसको नारकी के उचित प्रवृत्ति बाहर में होती है। परंतु अंदर में भान है कि मैं न मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न तिर्यंच हूँ, मैं न नारकी हूँ, मैं एक परम आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष भान वर्तता है और उसी भान में वो चलते हैं। इसी की प्रभुता है बस। इसका प्रभुत्व छाया हुआ है, परिणमन में छा गया है, प्रवृत्ति की कोई प्रभुता वहां नहीं है, वो तार गति की प्रवृत्ति कुछ नहीं है। इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने बोला कि सही मुक्त एव, वो तो मुक्त हो गया। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, क्या लिखा है? अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, वो तो खुद देव हो गया अचिंत्य शक्ति वाला। सर्व जिनागम में कहे हुए वचन एकमात्र असंगता में ही समा जाते हैं। सारा श्रुत ले लिया, जितना भी आगम का श्रुत है, जिनागम का श्रुत है, तो एक असंगता में सभी वचन समा जाते हैं। असंगता हो गया, सारा बारह अंक का सार है वो पा लिया, प्राप्त कर लिया। उसको शास्त्र पढ़ने की अटक होती नहीं, ऐसा भी नियम नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, रोज स्वाध्याय नित्य करता है कि वो ऐसा बंधन उसको अटक मैंने बंधन नहीं है उसको कि शास्त्र पढ़े तो सम्यक दर्शन उसका टिकेगा और शास्त्र जिस दिन नहीं पढ़ेगा उस दिन उसका सम्यक दर्शन चला जाएगा, ऐसा होता बहुत। राजमल जी ने तो बहुत अध्यात्म प्रधानता से बात किया है वहाँ 13 नंबर का कलश में कि ये शास्त्र पढ़ना तो विकल्प है, क्या है शास्त्र पढ़ना विकल्प है जबकि अनुभूति निर्विकल्प है, और ऐसा शास्त्र में लिखा है वारंग में ऐसा ही लिखा है, इसलिए विकल्प का निर्विकल्प के आगे कोई वैल्यू नहीं है। जाओ, निकाल दिया उसको, शास्त्र ज्ञान को निकाल दिया। हाँ, वहां 12 अंग का ज्ञान विकल्प है, समस्त श्रुत का ज्ञान विकल्प है, और अनुभूति इससे पार होती है, वो निर्विकल्प है, इससे पार होती है। क्या अनुभूति इससे पार होती है, इसका लेवल बहुत ऊंचा है। 12 अंग का श्रुत ज्ञान से भी इसका दर्जा बहुत ऊंचा है, ऐसा कहने का अभिप्राय है राजमल जी का। सर्व जिनागम में कहे हुए वचन एकमात्र असंगता में ही समा जाते हैं, क्योंकि वह होने के लिए ही सर्व वचन कहे हैं। सर्व वचन के कहने वाले का लक्ष्यार्थ यानी केंद्र स्थान एक अनुभूति में ले जाने का है, और कोई हेतु नहीं है। सर्व जिनागम का मोटिव पॉइंट क्या है, इसके पीछे हेतु क्या है, मोटिव क्या है, अनुभूति कराना, वही है। इसलिए सभी वचनों का सर्व टोटल अनुभूति में लगता है, और यही ज्ञानी की माने का आश्रय होता है। ज्ञानी अनुभूति संपन्न है, इसलिए ज्ञानी की वाणी इसी आशय से आएगी, और अज्ञानी को अनुभूति नहीं है तो वो आशय आएगा कहाँ से, इसकी वाणी में आएगा
नहीं।
एक परमाणु से लेकर 14 राज लोक की चर्चा आती है आगम में। क्या आगम में एक परमाणु से लेकर 14 ब्रह्मांड की बात आएगी, कर्म परमाणु करुणानुयोग में आता है ना, लोकालोक की व्यवस्था का वर्णन आता है। क्यों आई, असंगता समझाने के लिए आई, परमाणु की बात परमाणु का स्वरूप दिखाने के लिए नहीं आई, और 14 ब्रह्मांड का वर्णन भी 14 ब्रह्मांड का व्यवस्था दिखाने के लिए नहीं आया। सारा लोक आ गया, एक परमाणु से लेकर सारा लोक, इसका वर्णन क्यों किया, एक असंगता समझाने के लिए कहा है, इसके मोटिव पॉइंट वो है। और निमिषोन्मेष से लेकर शैलेशी अवस्था पर्यंत की सर्व क्रियाओं का जो वर्णन किया गया है वो इसी असंगता के समझाने के लिए किया गया है। आंख का खुलना और बंद होना, उसको मेषोन्मेष कहते हैं। मैंने अल्प भी देह के योग की क्रिया हो और शैलेशी अवस्था मैंने पूर्ण चारित्र अवस्था में स्थिर हो जाए, ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, इतनी यहां से लेकर के जितनी क्रिया का वर्णन हुआ है आगम में, वो भी असंग दशा के समझाने के लिए किया है। उसके पीछे भी एक ही हेतु है, चाहे जड़ की बात हो एक परमाणु के या सारे 14 ब्रह्मांड के, चाहे एक आंख के टिमकारे की बात हो या स्वरूप में परिपूर्ण स्थिर होने की शुक्ल ध्यान की बात हो, शुद्धोपयोग कराने के लिए सब बात कही है, इसके सिवा कोई हेतु नहीं है। वह इसी असंगता को समझाने के लिए किया है। अब ये निष्मेषोन्मेष की बात थोड़ा विशेष बात ऐसा लगता है कि जब आत्मा नासिकाग्र दृष्टि में ध्यान में आता है तो निश्चंचलता होती है, परिणाम की चंचलता बंद हो जाती है, यानी उसका आंख के टीमकारे बंद हो जाते हैं। थोड़ा प्रयोग करके देखना, स्वरूप ध्यान में जब दृष्टि स्थिर होती है तब आंख के पलकारे टिमकारे बंद हो जाते हैं, परिणाम की निश्चंचलता थोड़ी भी आती है ना तो ये पलकारे बंद हो जाते हैं। थोड़ा प्रयोग करके समझ लेना। ध्यान में नासिकाग्र दृष्टि होती है ना तो परिणाम की चंचलता है, वो निश्चंचल परिणाम हो जाते हैं, तो निश्चंचल परिणाम हो जाते हैं तो आंख के टिमकारे पलकारे भी बंद हो जाता है, दृष्टि स्थिर हो जाती है, आंख के अनि पर दृष्टि स्थिर हो जाती है। इतनी निश्चंचलता की प्रारंभिक सूक्ष्म क्रिया से लेकर के 12वें गुण स्थान के परिपूर्ण शुद्ध चारित्र दशा, यथाख्यात चारित्र की जो दशा है, शैलेशीकरण उसको कहते हैं। शैलेशीकरण मैंने शैलेश मैंने पर्वत, शैलेश मैंने शैलेश का अर्थ क्या होता है? पर्वत। पर्वत हिलता नहीं है, इतना स्थिर हो गया कि अभी हिलेगा नहीं, वो उपयोग हिलेगा नहीं, उसको शैलेशीकरण कहते हैं। ऐसी महान दशा होती है, सबका वर्णन जिनागम में आता है। क्यों? एक असंग दशा समझाने के लिए आया है, दूसरा कोई हेतु नहीं है।
आपने भी कहा ना कि आप प्रयोग करके देख लेना, तो हम लोग किस प्रेस का प्रयोग करें?
किस
कौन से आधार को कैसा प्रयोग करें?
तो बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो भी बात करेंगे, लेकिन वो कोई स्टेज की बात होती है, पर्टिकुलर स्टेज की बात होती है, सबके लिए वो संभव नहीं है। लेकिन जिसको उपयोग की चंचलता कम होने के लिए आत्मा आत्मस्वरूप का लक्ष्य रख करके स्वरूप चिंतन या स्वरूप का निधिध्यासन करने का प्रयोग होता है, उनके लिए वो बात है। सब के सब सर्व साधारण के लिए तो बात नहीं आती है, क्योंकि ऐसा प्रयोग सब जानते नहीं है, कैसे करना वो समझ में नहीं आता है, सबको समझ में नहीं आता है। क्या आगे कहते हैं कि सर्व भाव से असंगता होना है, यह सबसे दुष्कर से दुष्कर साधन मैंने कार्य है, परिणाम है, साधन मैंने परिणाम। सर्व भाव से असंगता होना, अपने पर्याय में भी कोई भी आत्मभाव को छोड़ करके साधक दशा में जो भी अन्य परिणाम होते हैं उनसे भी संग नहीं होना, भिन्नत्व रह जाना, इसका भी संग नहीं होना, सर्व भाव से संग होना, सर्व द्रव्य से और सर्व द्रव्य के परिणाम से और सर्व द्रव्य के अनुसरने वाले अपने परिणाम से, ये सर्व भाव आ गया, उसमें कोई भाव बाकी नहीं रहा। ऐसे सर्व भाव से असंगता हो जाना, मैंने उपयोग उसका संग नहीं करे, अंतर्मुख रह जाए, यह सबसे दुष्कर से दुष्कर साधन है, ये बहुत कठिन परिणाम है, आसानी से ऐसा होता नहीं है। और वह निराश्रय से सिद्ध होना अत्यंत दुष्कर है, और ऐसा सद्गुरु या सत्संग के आश्रय बिना होना तो संभव ही नहीं है। देखो विषय का अनुसंधान कहाँ से लेते हैं, असंगता तो करानी है, जिनागम में इसीलिए सर्व उपदेश है, लेकिन ऐसे असंगता सिद्धि कभी किसी को हुई नहीं है, न होने वाले भी है। निराश्रय रूप से मैंने अपने आप, आत्मा में शक्ति अपनी है, फिर भी अपने आप नहीं होता है, कोई अपने आप नहीं कर सकता है, ऐसी एक वस्तु स्थिति भी है। और वह निराश्रय सा से सिद्ध होना अत्यंत दुष्कर है, ऐसा विचार करके श्री तीर्थंकर ने सत्संग को उसका आधार कहा है। सत्संग को क्या बोला है, आधार बोला है। सत्संग का आधार लिए बिना किसी को असंगता की प्राप्ति, असंग भाव की प्राप्ति हुई नहीं है। ये बात किसने कही, तीर्थंकर ने कही है, मैं कहता हूं वो बात नहीं है, तीर्थंकर देव ने ये बात कही है। ये तीर्थंकर से स्थापित हुआ एक सत्य है, परम सत्य है वो, कि ऐसा किसी को आत्मध्यान लगता नहीं है। अरे एक शहर में जाओ आप, अनजाने शहर में, तो भी रास्ता पूछना पड़ता है कि हमको फलाने फलाने एड्रेस पर पहुंचना है तो कैसे जाएं, कितना मोड़ लेना पड़ता है फिर पहुंचते हैं, है क्या नहीं है? हम आए गढ़ेची वडला से आए, राजकोट रोड से, अहमदाबाद रोड से भावनगर में प्रवेश करें, पर माणिकवाड़ी आना हो सीधा आ जाएंगे क्या अनजाने लोग, पूछते पूछते आना पड़ेगा। तो ये तो अरूपी अंतर्मुखी रास्ता है, कैसा है वो, रूपी है और बहिर्मुखी है तो भी पूछना पड़ता है, तो अरूपी अंतर्मुखी जो रास्ता है उसको तो पूछे बिना वो रास्ता का पता किसी को लगता नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से अनजाना है और आदत उल्टी पड़ी हुई है, बहिर्मुख परिणमन की आदत पड़ गई है, क्या करोगे, अंतर्मुख का रास्ता ऐसे पता चलता नहीं है। जी हाँ वो बात ठीक है, ये प्रश्न अच्छा उठाया, कभी कभी पूछा करो राजू भाई। हमारे राजू भाई बहुत दिमाग वाले आदमी हैं, वो पूछते हैं कि कितने साल तक हम पूछते रहेंगे, एक दफे अच्छी तरह पूछो, क्या दूसरी दफे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दफे अच्छी तरह पूछ लो, दूसरी दफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ठीक है, लेकिन किसको पूछना वो सवाल अवश्य है, किसको पूछना वो सवाल अवश्य है। बात तो ठीक है, गुरुदेव मिले फिर भी फेर नहीं पड़ा तो हमारे में गड़बड़ है, इसमें गुरुदेव का कोई दोष नहीं है, दोष से तो भरे हुए हम लोग हैं। हाँ तो क्या वो मार्मिक प्रश्न पूछा है कि ऐसे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते पूछते पूछते बहुत साल बीत गया, अब कहाँ तक करें, लेकिन यथार्थ रूप से न सुना है न यथार्थ रूप से पूछा भी है, बाकी तो एक दफे का काम है, और जो भी यथार्थ रूप से होगा वो एक ही दफे होगा, रास्ता मिल जाएगा, वो रास्ता मिल जाएगा, एक दफे यथार्थ आएगा तो रास्ता मिल जाएगा। ऐसा विचार कर श्री तीर्थंकर ने सत्संग को उनका साधन या उसका आधार कहा है, साधन शब्द भी नहीं प्रयोग किया है, आधार कहा है। इसमें महत्व वाली बात है कि सत्संग है वो मुमुक्षु जीव को, अनजाने जीव को एक अवलंबन भूत प्रसंग है, उसका आश्रय उसका आधार मिलता है तो उसको अंतर्मुख होने का मार्ग मिलता है, और उसका आधार और आश्रय जो नहीं लेता है ऊपर ऊपर से चलता है, आधार आश्रय नहीं लेता है तो क्या है, ऊपर ऊपर से चलता है तो उसको रास्ता मिलता नहीं है। इसलिए एक दफे भी अंदर से आना, ऊपर ऊपर से तो कितने भी साल पूछा करो उसका कोई मतलब नहीं है। पात्रता ठीक बात है, पात्रता में आए बिना कोई काम होने वाला नहीं है, कितना भी पूछ ले इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो जाएगा। हमें इंफॉर्मेशन ब्यूरो नहीं होना है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया सब जान लिया ये वो बात नहीं है। हाँ, पात्रता में आकर के यथार्थता में आकर के एक दफे भी पूछ लो, अंदर में बात उतर जाएगी। सुगानी जी ने एक दफे सुना ना गुरुदेव का प्रवचन, उतर गई है कि नहीं अंदर, तो क्या वो आत्मा है उसी जाति के हम आत्मा नहीं है क्या, हम उसी जाति के आत्मा है। तो इसलिए सत्संग का आश्रय कहने के लिए कहा है कि जिस सत्संग के योग से जीव को सहज स्वरूपभूत असंगता उत्पन्न होती है, असंगता को सहज स्वरूपभूत कहा है, और ये सत्संग के योग से उत्पन्न होती है। बिना सत्संग किसी को असंगता आई हो ऐसा एक केस भी ना है। तो इसलिए सत्संग का क्या महत्व है, मुमुक्षु के जीवन में क्या महत्व है, उस विषय का अनुसंधान करके यहाँ तक आए हैं। अब और भी इसके जो पहलू हैं उसका प्रतिपादन करेंगे आगे जाकर के।
भगवान।